ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। बागलुंग के बरीगाड़ में हुई जीप दुर्घटना के सभी मृतकों की गई पहचान। घायलों का इलाज काठमांडू में जारी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी नियमावली जल्द ही लाने की तैयारी। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने दी जानकारी। और भारत के जिला पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों ने किया सीज फायर का उल्लंघन। गोलीबारी में एक महिला समेत दो की मौत। अब समाचार विस्तार से। बागलुंग के बरीगाड़ में हुई जीप दुर्घटना में मरने वाले सभी 14 लोगों की शनाख्त की गई है। मरने वालों में जीप चालक गुलमी की इश्मा गांवपालिका 5 के रेशम थापा, माया थापा, बसुंधरा कार की इश्मा 4 की सीता कार की, उनकी 2 वर्षीय बेटी अनुषा कार की, झवी कार की, महेंद्र कार की, भूमि कार की, सूचना कार की एवं मीना बसनीत हैं। इसी तरह इश्मा 4 के ही धन बहादुर कार की, नवलपरासी बर्दघाट नगर पालिका 1 की, मूमा कार की, बागलुंग बड़ीगाड गांव पालिका 7 की, नरमाया खत्री एवं कंचनपुर के धन बहादुर कार की मृत्यु होने की जानकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक जविंद्र भट्टराय ने दी। इसी क्रम में इश्मा 4 के धन बहादुर कार्की के लापता होने की खबर प्रहरी ने दी है। अन्य घायलों में नवलपरा से बर्दघाट 2 के जीवन कार्की, गुलमी के हिमाल कार्की और मीना केसी शामिल हैं। इन सभी घायलों को नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू लाया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये सभी यात्री जीप में कुल पूजा के लिए निकले थे, परन्तु ये जीप मध्य पहाड़ी लोकमार्ग से करीब 350 मीटर नीचे खाई में गिरी थी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। बागलुंग में हुई जीप हादसे में मारे गए लोगों के प्रति नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा ने श्रद्धांजलि अर्पित के साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सभापति देउबा ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए सड़क दुर्घटना कम करने के लिए तत्काल एक कार्यदल गठन करने, घटनाओं के विषय में अध्ययन करने, सड़क दुर्घटना कम करने और करवाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार आने की जानकारी उनके इलाज में शामिल चिकित्सकों ने दी है। प्रधानमंत्री ओली ने कल सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद ठीक होने की जानकारी दी थी। इस वर्ष टंक प्रसाद आचार्य राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से नीलांबर आचार्य को सम्मानित किया गया है। नीलांबर आचार्य भारत के लिए नेपाली राजदूत हैं। इसी तरह सिंह लतावन श्रेष्ठ को रेवंत कुमारी मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने आचार्य को 2 लाख रूपये सहित सम्मान पत्र एवं श्रेष्ठ को 1 लाख रूपये सहित सम्मान पत्र से नवाजा। टंक प्रसाद आचार्य की 108वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि लोकतंत्र और परिवर्तन के पक्ष में शंखनाथ स्वर्गीय आचार्य ने ही किया था। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय आचार्य के प्रधानमंत्रित्व काल के लोक कल्याणकारी बताते हुए कहा कि भूमि सुधार, राष्ट्र बैंक की स्थापना, निजामती सेवा ऐन की शुरूआत आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य स्वर्गीय आचार्य के कार्यकाल में ही हुए थे। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन ने बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का आग्रह किया है। 28वीं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ भी सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ साथ समग्र विकास में सहयोग करना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय जनगणना 2068 के तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्या में से 2% जनसंख्या विकलांग व्यक्तियों की है। आज आयोजित इस सम्मेलन में एशिया के 350 व्यक्तियों की सहभागिता थी। इसी क्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मद्देनजर करते हुए नियमावली जल्द ही लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विकलांग संबंधी नीति तथा कानून को समावेशी बनाने के लिए सरकार संबंधित व्यक्तियों से समन्वय कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। संसद की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने संघीय निजामती कर्मचारियों के सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक के मसौदा के ऊपर विचार विमर्श आज भी जारी रहा है। बहुत समय से सीमित में रहे विधेयकों के बहुत सारे प्रावधानों में संशोधनों करने की बात पर सहमति होने के बाद भी सहमति कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदेश त्रिपाठी ने सरकार के बजट और नीति तथा कार्यक्रम से तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के हिसाब से काम करने के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों को निर्देश दिया है। मंत्रालय में आज आयोजित प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं विकास समस्या समाधान समिति की बैठक में मंत्री त्रिपाठी ने सरकार के बजट तथा नीति कार्यक्रम से निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार काम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त टकाल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्रों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज भक्तपुर के मध्यपुर थीमी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री टकाल ने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पताल में 10 बजे हाजिर होकर निजी क्लिनिक चलाने की परंपरा को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई ने कहा कि आगामी 10 सालों के अंदर नेपाल के सभी नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओ के मापदंड अंतर्गत पहुंचाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा आज भद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई ने ये बात कही। 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद साग अंतर्गत आज तीसरे दिन नेपाल ने 8 स्वर्ण जीतकर वरीयता क्रम में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक नेपाल कुल 23 स्वर्ण, 7 रजत एवं 11 कांस्य पदक प्राप्त कर अग्रस्थान में है। इसी तरह भारत 15 स्वर्ण, 16 रजत और 9 कांस्य सहित दूसरे स्थान में है, जबकि श्रीलंका 5 स्वर्ण, 13 रजत, 14 कांस्य सहित तीसरे स्थान में है। आज वह खेल अंतर्गत उसू में विजय संजाली और सुष्मिता तामांग ने यावलो में स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण के साथ संतोषी श्रेष्ठ ने नया कीर्तिमान बनाया है। महिला 10,000 मीटर दौड़ में संतोषी ने भारतीय खिलाड़ी को 1 मिली सेकेंड से हराते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वे साग में महिलाओं की ओर से एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। इसी तरह आज हुई वुमेन्स वॉलीबॉल में नेपाल ने रजत पदक प्राप्त किया। फाइनल में नेपाल भारत से 2 सेट में पराजित हुई थी। सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर पहली बार नेपाली वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंची थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के जिला पुंछ में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने शाहपुर कस्बा, केरनी, वनपथ और टोगरी सेक्टर में भारतीय चौकों के साथ रिहायशी इलाकों में निशाना बनाते हुए गोले दागे हैं। पहले तो पाकिस्तानी सैनिकों ने हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया, परंतु जब भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की तो पाक सैनिकों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागना शुरू कर दिया था। अचानक से की गई इस गोलीबारी में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय शोएब अहमद, जबकि महिला की पहचान 35 वर्षीय गुलनास अख्तर पत्नी तारिक हुसैन के रूप में हुई है। इसके अलावा 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें पुंछ के सुखदेव सिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.7 और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। बागलुंग के बड़ीघाट में हुई जीप दुर्घटना के सभी मृतकों की गई पहचान, घायलों का इलाज काठमांडू में जारी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी नियमावली जल्द ही लाने की तैयारी, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने दी जानकारी। और भारत के जिला पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों ने किया सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी में एक महिला सहित 2 की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।